नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 22,236 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट का खाका पेश किया। सरकार ने नागरिकों से डिजिटल तरीकों से एलपीजी सिलेंडर बुक करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दवाओं की अवैध हेराफेरी और अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश मामलों में संगठित साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और दिल्ली में भीलवाड़ा सुरसंगम 2026 आज संपन्न हुआ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए ग्रीन बजट का खाका पेश किया। इसका उद्देश्य राजधानी की आबोहवा में सुधार और प्रदूषण मुक्त भविष्य सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत करीब 1,03,700 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 22,236 करोड़ रुपए के हरित योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 6,485 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग को 4,758 करोड़ रुपए ई बसों और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग को 3,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिजली विभाग को 1,410 करोड़ रुपए और पर्यावरण विभाग को 558 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा, पर्यटन, उद्योग और स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी हरित पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
सरकार देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। सरकार ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए डिजिटल तरीकों का उपयोग करने तथा गैस वितरकों के पास अनावश्यक जाने से बचने को कहा है। एक रिपोर्ट।
तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि फरवरी 2026 से कल तक एलपीजी आपूर्ति 53% से बढ़कर 90% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि कल 90,000 से अधिक 5 किलोग्राम वाले एफटीएल छोटे सिलेंडर की बिक्री की गई। ये छोटे सिलेंडर नजदीकी एलपीजी वितरक के पास उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी वैध पहचान पत्र दिखाकर खरीदा जा सकता है। इनके लिए किसी आवासीय पते की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2026 से लगभग 3,60,000 पीएनजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इनके अलावा 3,90,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगली पीढ़ी की अमृत भारत रेलगाड़ियों के डिब्बों का निरीक्षण किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन डिब्बों को यात्रियों के आराम, सौंदर्य और समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन डिब्बों को विशिष्ट आंतरिक रंग थीम से सुसज्जित किया गया है। इसमें पीवीसी फर्श, सीट और बर्थ रैक्सिन, स्नैक टेबल, पर्दे और शौचालय क्षेत्रों जैसे प्रमुख घटकों में समन्वित रंगों का उपयोग किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन डिब्बों में उपयोग की गई सभी सामग्री जोखिम स्तर 3 अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए लगभग 1500 AI कैमरे लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रत्येक कर्मचारी और विक्रेता को पहचान पत्र और जैकेट दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे स्टेशन को भारत टैक्सी से जोड़ा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज सरकारी अस्पतालों की मुफ्त दवाओं की अवैध हेराफेरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से अवैध वाहन के साथ एंटीबायोटिक्स और जीवन रक्षक दवाएं बड़ी मात्रा में बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने दिल्ली में नकली दवाइयां बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर शाद्रा से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 12 लाख से अधिक नकली दवाइयां जब्त की गई। वहीं अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपी वर्ष 2011-12 से नकली दवाओं का काम कर रहे थे।
पूरी फैक्ट्री को बर्स्ट करने के बाद हमें वहां पर काफी भारी मात्रा में जो फेक ऑइंटमेंट है वो मिली है और पूरा का पूरा सेटअप मिला है। इसके अलावा कई तरह के और रॉ मटेरियल्स मिले हैं जिसमें स्टेरिक एसिड, सेटाइल अल्कोहल, नायसिनामाइड और मशीन्स मिली हैं जैसे फिलिंग मशीन, गैस सिलेंडर, श्रिंक रैप मशीन। तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप था।
अपराध शाखा ने आज अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश संगठित साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भी पर्दाफाश किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 11 आरोपी सहित मुख्य आरोपी को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 48 मोबाइल फोन, 258 सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड और चेकबुक, 4 लैपटॉप, बैंकिंग और केवाईसी दस्तावेज तथा 19 लाख रूपये जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच जारी है। दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज तिकोना पार्क लक्ष्मीबाई नगर मार्केट में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने कहा कि यह एक सामाजिक जन अभियान है जिसके माध्यम से लोगों को अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
सभी लोगों ने मिलकर हमारे साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया एक ही संकल्प के साथ कि जिस तरह माँ ने पाल पोस के हमें बड़ा किया है, हम भी इस पेड़ का ध्यान रखेंगे, पेड़ को पालेंगे, पेड़ को एक तरह से गोद लेंगे। और माँ के नाम जब लगाया हुआ एक पेड़ है वो संस्कृति के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारी देन है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आज देश को एक पेड़ माँ के नाम का जो विजन और थॉट हम सबको दी है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मानसिक शांति और आत्मलोकन का महत्व बढ़ गया है और ध्यान ही समग्र स्वास्थ्य की कुंजी है। आज नई दिल्ली में विश्व ध्यान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ध्यान तनाव घटाने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होने के साथ ही यह जीवन के प्रति एक सहज और सम्यक दृष्टि भी पैदा करता है।
Meditation is what, to me, it gives you lot of observing capacity. It keeps you always fresh mind to listen to others, to take all the positive things from others. Our lifestyle has been designed in this part of the world, in the eastern part of the world, for living.
श्री राधा कृष्णन ने वर्ष 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए देश को अनुशासित प्रयासों की आवश्यकता है जो मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से ही संभव है। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक चुनौतियों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटना भी आसान है। उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन से दुनिया भर में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में साधना सप्ताह के अंतर्गत कई पहलों का शुभारंभ किया। इनमें उन्नति पोर्टल और कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन की रूपरेखा शामिल है। डॉक्टर सिंह ने एक विशेष सत्र में कहा कि मिशन कर्मयोगी ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 2 से 8 अप्रैल तक मनाया जा रहा साधना सप्ताह सरकारी अधिकारियों के बीच निरंतर सीखने की संस्कृति को मजबूत करने और कौशल वृद्धि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में चल रहे भीलवाड़ा सुर संगम 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। यह कार्यक्रम LNJ भीलवाड़ा समूह द्वारा आयोजित किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस 2 दिवसीय उत्सव की शुरुआत युवा शास्त्रीय गायक भागेश मराठे की प्रस्तुति से हुई।
राजधानी के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह के 13वें संस्करण की पहली संध्या सुरों की गरिमा और भावनात्मक अभिव्यक्ति से सराबोर रही। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदुस्तानी शास्त्रीय युवा कलाकार भाग्येश मराठे की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर जयंती कुमारेश ने सरस्वती वीणा वादन प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इस समारोह में LNJ भीलवाड़ा समूह के चेयरमैन रवि झुंझुनवाला ने कहा कि भीलवाड़ा सुर संगम भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला भीलवाड़ा सुर संगम भारतीय शास्त्रीय संगीत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे दिल्ली राज्य ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन है। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिभागियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही भाजपा अध्यक्ष ने पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सचदेवा ने बताया कि खिलाड़ियों के अद्भुत ऊर्जा को देखकर बेहद खुशी हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज डिफेंस कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के शुक्राना कीर्तन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री संधू ने दिल्लीवासियों की शांति, प्रगति, विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आज ईस्टर रविवार है। यह अवसर प्रार्थना, पश्चाताप और प्रभु ईसा मसीह के जीवन के अंतिम चरण का स्मरण करने के पवित्र सप्ताह का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस दिन को आशा और नवजीवन का उत्सव बताया और विश्वास व्यक्त किया कि यह त्यौहार सभी के जीवन को प्रकाशित कर जीवन में शांति और आनंद लाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रभु यीशु की शिक्षाएं करुणा और समाज में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने बताया कि यह पवित्र दिन शांति, करुणा और न्याय के प्रति सभी की प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाता है। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह का जीवन और उनका संदेश सभी हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। वहीं राजधानी के सेक्रेट हार्ट गिरजाघर सहित सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं सेवाएं आज आयोजित की गई। इस अवसर पर लोगों ने प्रार्थनाएं कर एक दूसरे को बधाई दी और परिवार के साथ मिलकर खुशियां बांटी। यह त्यौहार गुड फ्राइडे के दो दिन के बाद मनाया जाता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 119वीं जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली गेट स्थित उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री की स्मृति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपना जीवन समानता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया था। राजधानी में आज दिनभर मौसम साफ रहा और तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में नया आयकर अधिनियम 2025 विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें आयकर विभाग के संयुक्त सचिव पीताम्बर दास और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता इस विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या #AskAIR के साथ X पर पोस्ट कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 22,236 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट का खाका पेश किया। सरकार ने नागरिकों से डिजिटल तरीकों से LPG सिलेंडर बुक करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दवाओं की अवैध हेराफेरी और अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश मामलों में संगठित साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और दिल्ली में भीलवाड़ा सुरसंगम 2026 आज संपन्न हुआ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।